इस रूप में जिसकी स्थिति हो गई है, जिसका ये भाव हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसके चित्त में हर वक्त प्रसन्नता रहती है। ये उच्च कोटि के साधक की बात है, ज्ञान के मार्ग के द्वारा जो उच्च कोटि का साधक बन चुका है उसकी बात है। और न सोचती न कांक्षी, न तो कोई बात का शोक करता है और न कोई आकांक्षा करता है, वह मेरी पराभक्ति को यानी तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। और उस तत्व ज्ञान से मुझ परमात्मा को ज्यों का तू जान करके फिर मेरे में प्रवेश कर जाता है। तो ज्ञान के मार्ग के बीच के माँ भी हंता और ममता का त्याग बतलाया, और भक्ति के मार्ग के माँ भी, और कर्मयोग के मार्ग के माँ भी, भक्ति के मार्ग के बीच के माँ भगवत अर्थ कर्म करने के समय में जो शुद्ध अहंकार रहता है उससे वो पाप से निपायमान नहीं होता, स्वार्थ न रहने के कारण से। फिर आगे जाकर के वो अहंकार भी मिट जाता है। इसी प्रकार से कर्मयोग के मार्ग के माँ फल और आसक्ति का त्याग कर करके कर्म करने वाला, उसमें स्वार्थ और आसक्ति का सबका त्याग है, इस वास्ते वो कामना का भी उसमें अभाव है, इसलिए आपने वो पाप का भागी नहीं होता। उसके मां जो शुद्ध अहंकार रहता है तो वो अहंकार नहीं के समान ही है, आगे जाकर उस अहंकार का भी विनाश हो जाता है। तो ये समझ लेना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति किसी भी मार्ग से हो, उसके बीच के मां न कामना रहती है न आसक्ति रहती है, माने राग द्वेष भी नहीं रहते, आसक्ति भी सोचे राखो और कामना भी नहीं रहती, और अहंकार और ममता का भी अभाव हो जाता है। अहंकार का, ममता का, कामना का, आसक्ति का, इन सब का अभाव हो जाता है आगे जाकर करके। चाहे कर्मयोग से माने कर्मयोग को द्वार बनाकर चाहे साधन करो, चाहे ज्ञान योग को साधन ज्ञान योग को द्वार बना करके साधन करो, चाहे भक्ति योग को, उसका आखिरी नतीजा सबका एक ही होता है, और सबके मां समता आ जाती है, जिसका विस्तार थोड़ा रात्रि के मां कहकर आपको बताया था। साधन के बीच के मां भी समता की आवश्यकता है, और सिद्ध में तो समता आ ही जाती है। तो जिसके मां समता नहीं है वो साधक साधक नहीं, और वो सिद्ध सो सिद्ध नहीं। जिसके बीच के मां अहंकार है, ममता है, तब तक उसका दर्जा नीचा है, चाहे कर्म योगी हो, चाहे सांख्य योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो। और आसक्ति के अभाव के बिना कोई भी कार्य किसी दिन नहीं होती। जब आसक्ति का अभाव हो जाता है तो फिर आसक्ति के साथ ही काम और क्रोध का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि संग जो आसक्ति है उसी से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। तो सारे विकारों का अभाव हो जाता है आसक्ति के अभाव होने से। संगासंग जाते कामे कामात क्रोध हो भी जाते, क्रोधात भवति संमोह, संमोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। ये दिख रहा है कि संसार के भोगों के मां आसक्ति उत्पन्न होती है ना, क्यों होती है कि विषयों के चिंतन करने से। तो विषयों का चिंतन करना ही एक प्रकार से थी हमारे लिए समझना चाहिए पाप के तुल है। जाए तो विषयन पुरुष संग से शुभ जाए थे, ये पुरुष जो है विषयों का चिंतन करता है, चिंतन विषयों के ध्यान करते हुए पुरुष में आसक्ति पैदा हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर वो आसक्ति सारे अंदर संघ की मूल है। तो संगा संग जायते कामे कामात क्रोधो भी जायते, उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और कामना की पूर्ति में कहीं आघात पड़ता है, व्याघात पड़ता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से फिर मोह जो है अज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और फिर मोह से थी समझ शक्ति ठीक नहीं रहती, उसका विनाश हो जाता है, और अपने समझ शक्ति के विभ्रम होने से और फिर इसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से इसका खुद का फिर पतन हो जाता है। तो ये कर्म दिखलाया, इससे ये बात सिद्ध हुई कि आसक्ति सब अनर्थों की मूल है। तो आसक्ति के त्याग बिना कोई भी कार्य किसी देश को नहीं होती, इसलिए आसक्ति का त्याग हम लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। वो आसक्ति समझो सारी क्रिया में, सारे पदार्थों में, शरीर में और सब इंद्रियों के बीच के मां घर करके के वो आसक्ति बैठी हुई है। और आसक्ति का कार्य जो काम है वो अशोक घर करके बैठा है। भगवान ने गीता की तीसरी अध्याय में बतलाया कि ये काम ही तुम्हारा शत्रु है और ये एक प्रकार से मन बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर थाना डाल करके इसके ऊपर कब्जा कर करके बैठा है। तो इस वास्ते इस काम पापी को तुम मारो। वो काम क्या कि जो आसक्ति से जय की उत्पत्ति हुई, अब वो सारे पापों का, सारे अंधों का मूल है जो काम है। काम से क्रोध से रजोगुण समूल है और महासन्नो महापाप मां विद्यने मि बरिनम। ये काम है, ये क्रोध है। क्यों? कि कामात क्रोध भी जाए थे, इस वास्ते काम है ये क्रोध है। इसकी रजोगुण से उत्पत्ति है। तो बोले तो वहां तो ये बात कही सुना समझाए थे, काम है आसक्ति से कामना की उत्पत्ति है और यहाँ आप कहते हो कि रजोगुण से इसकी उत्पत्ति है। तो पूर्वापर में विरोध आता है कि इसकी उत्पत्ति रजोगुण से है या इसकी उत्पत्ति सो अपने आसक्ति से है। कि बोले दोनों एक ही चीज है। रजो रागात्मक विद्धि, रजोगुण को तू राग ही समझ। जो रजोगुण है वही राग माने आसक्ति है, जो आसक्ति है वही रजोगुण है। तो जहां जहां एक प्रकार से थी समझो कि विषय आ रहे तो यज्ञ को, दान को, तप को, उनके भीतर के बीच के मां आसक्ति और आसक्ति से उत्पन्न वाली कामना, जिसमें कामना और आसक्ति है वही कर्म जो है सो राष्ट्रीय कर्म है। चाहे यज्ञ हो, दान हो, चाहे तप हो, चाहे कुछ भी हो। तो रजोगुण और राग बने आसक्ति एक ही चीज है। तो ये बात बतलाई गई। तो जिससे काम की उत्पत्ति है वो है सो रजोगुण, वो है आसक्ति। तो आसक्ति सब अनर्थों को मूल है। वो आसक्ति प्रधानता से सारे संसार में है, किंतु विशेषता से आपको बतलाई जा रहा है कि कंचन और कामनी और मान बढ़ाई और समझो की ईर्षा, इनके मां वो विशेष रूप से विराजमान है। और शरीर में कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये कंचन माने समझो कि सोना, और सोने से जो मिले रुपया सिक्को जो है, चाहे लोट ही हो, मैं को नाम भी आजकल कंचन ही है, देखने में तो कागज है किंतु मैं को नाम कंचन समझना चाहिए, मतलब रुपयों से है। तो इनका त्याग करना सहज है, सहज तो नहीं अपेक्षा करते सहज है। और कंचन के बाद आई कामनी, उससे कामनी का त्याग करना कठिन है, स्त्री भोग का त्याग करना। तो मनुष्य इन दो को त्याग भी देवे तो आगे जो घाटी और इससे कठिन है मान, और मान से भी बढ़कर के बढ़ाई, बढ़ाई के लिए मान को भी छोड़ देता है कि लोग मेरी कीर्ति करेंगे, तो मान प्रतिष्ठा को छोड़ो, तो मान प्रतिष्ठा को छोड़ देता है कीर्ति के लिए। उससे भी और कठिन त्याग है ईर्षा। मन संसार के मां समझो कि लोग मेरी इज्जत करते हैं एक प्रकार से, समझो कि कोई कहते हैं कि अच्छा पुरुष है, अच्छा योगी है, कोई महात्मा है, कोई ज्ञानी है, कोई भक्त, ऐसा कहते हैं। किंतु ये सुनकर के भी मनुष्य के हृदय में ये बात आती है कि मेरे से दूसरा श्रेष्ठ कायम नहीं रहे। बोले ऐसा अमुक आदमी तो बहुत ही अच्छा है किंतु उससे भी वे महात्मा और बढ़कर है, तो ये सुनना नहीं चाहता। जब तक मन के मां अज्ञान रहता है, जब तक एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक एक प्रकार से ये बात अकड़ती। तो ये बताया गया कि ये पांच आसक्ति के प्रधान स्थान है और छठा शरीर, शरीर में सबसे बढ़कर। माने मनुष्य जो है शरीर के आराम को जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। मानो ये शरीर है वही मेरी आत्मा है, शरीर ही खुद बना हुआ है। समझदार तो यूं समझता है कि शरीर तो मैं नहीं हूँ किंतु शरीर के अंदर मैं हूँ, ये शरीर है सो मेरा है। तो शरीर के मन जो हैंता है वो तो बहुत ही खराब है, और ममता है वो भी खराब है। तो ममता और हंता होने के कारण से शरीर में विशेष आसक्ति है और अणुओं के मन जो आसक्ति है वो शरीर को लेकर ही है अधिकांश में। तो इसलिए इस अहंता ममता का और आसक्ति और कामना का त्याग करके जो संसार में विचरण करता है वही उच्च कोटि का महात्मा पुरुष है। तो ये बात आपको बतलाई कि कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए, और यानी किसी के साथ में व्यवहार करो तो स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। जैसे हम लोग रेलगाड़ी में जाते हैं तो उस जगह के बीच के वहां समझो कि हम सोचते हैं तो वहाँ स्वार्थ सिद्ध हो ही जाता है। उसमें तीन प्रकार का वर्ताव है, एक सात्विक है, एक राजसी है और एक तामसी है। तो तामसी व्यवहार तो कभी करना ही नहीं, और राजसी जो व्यवहार है वो नीति का व्यवहार है। नीति है समझो कि वो न्याय है एक प्रकार से, उसको राजसी क्यों कहना चाहिए? नीति और न्याय को तो यही कहना चाहिए कि अच्छा व्यवहार है, बोलो हम उसको अच्छा मानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए हमारे को यही समझना चाहिए कि जैसे तीन प्रकार का दर्जा है तो वो भी एक प्रकार का नीचा दर्जा है, जो नीति का जो व्यवहार है। हाँ, अनीति से तो अच्छा है, तो फिर नीति से अच्छा और कौन सा व्यवहार है? वो है नीति से बढ़कर धर्मशास्त्र, जो धर्म का जो व्यवहार है वो। और धर्म का भी दो भेद है, एक सकाम एक निष्काम। सकाम जो धर्म है वो राजसी है और निष्काम जो धर्म है वो सात्विक है। इसलिए उसे नीति के व्यवहार को भी राजसी के साथ में शामिल कर लेना चाहिए। यदि सात्विक में करना चाहो तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका कोई फल नहीं। जैसे आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि हम लोग रेल में जाते हैं और हमारी सीट रिजर्व है, रात का वक्त है, हम चार भाई उस डब्बे में हैं और चारों अपनी अपनी सीट पर लेट रहे हैं। एक पांचवा आदमी और टिकट लेकर के आ गए, सीट चार ही, और वो बेचारा वहाँ डब्बे में अपने उस गाड़ी के वहां जो जगह रहती है वहां आकर के बैठना चाहता है या बैठ गया। अब वो आकर के बैठ गया तो नीति के हिसाब से हम उसको बाहर में अड़ा सकते हैं गार्ड को कह करके कि गार्ड साहब ये कायदा नहीं है, रात्रि के समय के वहां जितनी सीट है उतने आदमी रहने चाहिए, तो गार्ड उसको हटा देगा। ये नीति की बात है, किंतु साथ में स्वार्थ होने के कारण से नीति की बात होते हुए भी राजसी बात है, सात्विक नहीं। एक भाई जो है समझो कि एक सीट खाली है, पांच सीट उसके बीच के माहिर आदमी चार, वो एक भाई दो सीट को काम में लाता है कि एक में तो हमारे सब वस्त्र और सामान रहेंगे, एक पर हम सोएंगे, तो उसका वो तामसी व्यवहार है, वो एक प्रकार से अनीति का व्यवहार है, कानून से इस प्रकार से वो कर नहीं सकता। और भीतर से बंद कर लिया कपाट भी नहीं खोलता है, जगह खाली होने पर भी कपाट नहीं खोलता है, तो ये अनीति का व्यवहार है। हर एक उदारता का व्यवहार है, कोई आ गया तो उसको जगह दे दी, अपने क्या बैठा रहो, ये तो नीति की बात है, हम इसको क्यों रोके बेचारे को। और इससे बढ़ करके और धर्म का जो व्यवहार है वो इससे ऊंचा दर्जा है उदारता का, वो यह है कि भाई नीचे क्यों बैठते हो, आप भी सीट पर बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊंगा, रिजर्व है तो क्या बात है, एक प्रकार से मैं इस सीट पर सुता रहूं और आप नीचे बैठा रहो, ये एक प्रकार से मुझको अच्छा नहीं मालूम देता। ये मेरी आत्मा के बीच में ऐसा प्रतीत होता है कि तू मानो अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो आप इसके ऊपर बैठ जाओ, एक प्रकार से संकोच मत करना। ये उसका धर्म की दृष्टि से अपने दया का व्यवहार है, त्याग का व्यवहार है। और इससे भी और हम बढ़ जाएं कि भैया हम तो बहुत दूर से आ रहे हैं और मजे से इसमें लेट गए हैं, अब थोड़ी देर तुम लेट लो, हम एक किनारे बैठे रहे हैं और तुम आराम से लेट लो इसके ऊपर, तो ये और भी उदारता का व्यवहार है। गाड़ी एक चलने की तैयारी है और एक फर्स्ट क्लास का समझो कि मुसाफर है, उसको जगह नहीं मिली, उसको बुला लें, आइए भाई या चला, उसमें क्या बोलो, सीट खाली, वो खाली समझ लो, तुम खाली नहीं है तो खाली समझ लो, तो एक प्रकार से उसको उदारता से आह्वान कर लिया, बुला लिया, बैठा लिया, तो ये उदारता का व्यवहार। इसके भी दो भेद, एक तो हम अपनी कोई कामना के वास्ते उसको ये कर रहे हैं और एक निष्काम भाव से कर रहे हैं। कामना क्या, हम देखा कि ये अमुक निष्पेटर है, इनको ये करने आता है तो इसको थोड़ा इस वक्त में हम अपने खाती कर देंगे तो समय पर हमारे काम आएगा, ये उसके मस्वार्थ है। तो व्यवहार तो हमारा ऊंचे दर्जे का है किंतु वो सहकाम होने के कारण से राजसी है, सात्विक नहीं है। या यूं समझ ले मैं कि भाई एक प्रकार से ये साधु आ गए तो उसको बैठा लो और साधु की सेवा करने से थी समझो कि उसको अच्छा पुण्य होता है और परलोक में उसको अच्छा लाभ होता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लोक में उसकी कीर्ति होती है। आइए महाराज महाराज को बुला करके बैठा दिया। हम नीचे बैठ गए सीट पर, महाराज को सुला दिया। महाराज ने कहा बादशाह तुम तो भगवान के भक्त हो, बहुत अच्छे आदमी हो, और जाकर लोगों में कीर्ति करे कि आज हमको जगह नहीं मिलती, शेर जी ने हमारे को जगह दी, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े अपने अच्छे पुरुष हैं, भक्त है भगवान। हम फूल गए, खुश हो गए, तो काम तो हमने अच्छा किया किंतु मान बढ़ाई के लिए किया या अपने परलोक के लाभ के लिए किया? तो मान बढ़ाई के लिए किया, उसे तो स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम दर्जे की चीज है, और स्वर्ग की प्राप्ति से तेरी मुक्ति की इच्छा करी तो वो ऊंचे दर्जे की चीज है, और कोई प्रकार की इच्छा नहीं करके अपना कर्तव्य समझ करके ऐसा कार्य किया वो सबसे बढ़कर वो है असली निष्काम। तो हम लोगों को स्वार्थ का भी त्याग कर देना चाहिए और उस त्याग का भी त्याग करना चाहिए। त्याग का त्याग यह है कि त्याग पाने का अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ त्याग किया है। त्याग का यदि अभिमान आ जाएगा तो वो एक प्रकार से थी कर्म के फल का त्याग होने पर भी एक प्रकार से परलोक में हम फल के भागी होंगे। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगोष कर्मणि। गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है ही नहीं। तो अधिकार नहीं है तो फिर फल की इच्छा करना तो एक अनधिकार चेष्टा है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं, तो फल की इच्छा तेरे को नहीं करनी चाहिए। फिर कहते हैं कि कर्म के फल का हेतु भी तुम मत बनो। तो कर्म के फल का हेतु बनना क्या है कि इस कर्म के फल का मैंने त्याग कर दिया, मैं कर्म के फल का त्यागी हूँ, मैंने कर्म किया। तो कर्म के कर्ता, कर्म के बीच में कर्ता अपने का अभिमान, ममता का अभिमान, और उसके फल के त्याग का अभिमान, उसमें आसक्ति के त्याग का अभिमान, ये जो अभिमान है, आसक्ति है, वासना है, ममता है, ये सब कर्म फल के हेतु हैं। ये होने से उसको कर्म का फल मिलेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म के फल का हेतु भी तू मत बन, और कर्म के फल का हेतु नहीं बनू तो कर्म करूं भी क्यों? तो भगवान कहते हैं कि कर्म के न करने में भी तुम्हारी आसक्ति मत हो, यानी कर्म के न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। न तो कर्म के में आसक्ति होनी चाहिए और न कर्म के न करने में आसक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसके लिए भगवान ने गीता की 3 अध्याय के 18 के श्लोक में यह सर्टिफिकेट दिया है कि नयो तस्य कृते नार्थो न कृते ने कष्ट न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अत्र वासयः। जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसके लिए ये बात कही कि ऐसे पुरुष को कर्मों के करने करके भी प्रयोजन नहीं और कर्मों को न करने करके भी प्रयोजन नहीं, न तो कर्म के करने में और न करने में, यानी ग्रहण और त्याग में दोनों में ही समता है। सारे भूत प्राणियों में उनका प्रयोजन का जो आश है किंचित मात्र भी नहीं रहता, किसी के मां भी उसका प्रयोजन का मैंने अपने अर्थ की सिद्धि के लिए समझो कि किसी भूत में भी उसका संबंध नहीं रहता। ऐसा जो पुरुष है वो महात्मा पुरुष है। तो जिसको महात्मा बनना है ना उसके लिए ये साधन है कि कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, और माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगोष कर्मणि। अर्जुन तेरा कर्म के माँ अधिकार फल में कभी नहीं, और कर्म के फल का हेतु भी तू मत मन, माने कर्म के फल का जो तूने त्याग कर दिया है वो त्याग करने का भी अभिमान तुम्हारे में नहीं आना चाहिए। यदि कर्म के करने का अभिमान आ गया और त्याग का अभिमान आ गया, या उसमें ममता आ गई या उसमें आसक्ति आ गई, तो एक प्रकार से उस कर्म का फल तेरे को मिलेगा। तो इसलिए भगवान का ये कहना है कि स्वार्थ के त्याग के बाद भी हमको निष्काम बनना चाहिए। आपने स्वार्थ का त्याग किया आपने आसक्ति का त्याग किया, किंतु स्वार्थ और आसक्ति का त्याग क्यों किया? कीर्ति के लिए। क्यों किया? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो वो भी एक प्रकार का फल ही है, और उसका भी आपने त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? मुक्ति के लिए। तो मुक्ति की जो कामना है वो कामना नहीं, निष्काम के ही तुल है, किंतु फिर भी कामना की जाति से तो है। तो असली निष्काम पुरुष तो वह है कि जिसके हृदय में मुक्ति की भी कामना नहीं है। भक्ति में भी यही बात है। स्वयं भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनोर्जुने, आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तस्व। चार प्रकार के सुकृत जने मुझको भजते हैं, एक अर्थार्थी, एक अर्थ, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। अर्थ की इच्छा करने वाला अर्थार्थी है, उसे तो अर्थ श्रेष्ठ है कि अर्थ भगवान को रात दिन तंग नहीं करता, समझा? वो एक प्रकार से आपत्ति काल के मां संकट निवारण के लिए करता है, जैसे द्रौपदी। और जिज्ञासु वह है कि जो मुक्ति के लिए अपने भगवान को भजता है, आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा का तत्व जानने के लिए। और ज्ञानी वह है कि जो एकदम निष्कामी है, या सिद्ध पुरुष महात्मा या उच्च कोटि का साधक है जो एकदम निष्कामी। तो उन सब में निष्कामी ज्ञानी श्रेष्ठ है, तो अपने तो ज्ञानी बनना चाहिए, अज्ञानी क्यों रहे? तीनों में अज्ञान सिद्ध किया गया, अर्थार्थी में अधिक अज्ञान है, और समझो कि अर्थ में उससे कम और जिज्ञासु में उससे भी कम, वो शुद्ध अभिमान है। और सिद्ध जो पुरुष उसमें तो है ही नहीं, किंतु उस कोटि के ज्ञानी निष्कामी में भी नहीं है, उसकी भगवान ने प्रशंसा की है। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति विशिष्टते प्रियो ज्ञानी ने उतरते हम सतम हम प्रिय। माने उनके माँ एक भक्ति वाला जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है उन चारों के बीच में। ज्ञानी को मैं अतिशय प्यारा हूँ, इसलिए ज्ञानी मुझको अतिशय प्यारा है। उदारा सर्वे वेचे ज्ञानी त्वात्म में मतम, एते सर्वे उदारा, सभी भक्त उदार है, और ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, मेरे स्वरूप ही है, मेरे से अभिन्न है। इन सब बातों को सोच करके हमको ज्ञानी बनना चाहिए, और समझो कि स्वार्थ का त्याग करके भी उस त्याग का भी त्याग करना चाहिए, पूर्ण निष्काम बनना चाहिए। और सभी साधनों के मां निष्काम भाव की आवश्यकता है, सभी साधनों में समता की आवश्यकता है, सभी साधनों में ममता और अहंकार के त्याग की आवश्यकता है, सभी साधनों में आसक्ति और कामना के त्याग की आवश्यकता है।